नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है।
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है,
कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है,
कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, मुझ में
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूल है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूल है,
कभी नहीं भूल है, कभी नहीं भूल है,
कभी नहीं भूल है, कभी नहीं भूल है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको फिर से एक बार मेरा मसीह नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के वचन की संगति में प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह उसके वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि आज हम फिर से अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम फिर से परमेश्वर की निकटता में आएं और अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जब हम आपके वचन में से सीखते हैं। पिताजी, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए ताकि जो कुछ भी आज हम अध्ययन में सीखते हैं हमारे जीवन में लाभकारी हो सके, हम आत्मिक जीवन में बढ़ सकें। हमारे उन प्रिय भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना है जो दुखी हैं, निराश हैं, चिंता और परेशानियों में हैं। पिता परमेश्वर, आप उनकी भी सुधि लीजिए ताकि वे भी इस वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करने पाए। इस समय को हम सबको आपके हाथ में देते हैं, आप हम सबकी सहायता करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यीशु मसीह प्रार्थना करके गतसमनी की वाटिका में गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके बैरियों के साथ यहूदा इस्करियोती उसे खोजता हुआ वहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ। वे सब दल बनाकर और हथियार लेकर वहीं आए कि यीशु को पकड़े, परंतु उसकी महिमा का दर्शन पाकर वे डर के कारण पीछे गिर गए। पत्रस, जिसने संभवतः जीवन में पहली बार तलवार चलाई थी, दासों में से एक जिसका नाम मलखुस था, उसका कान काट दिया। यीशु ने उस दास का कान जोड़ दिया और पत्रस एवं अन्य शिष्यों को तलवार चलाने से रोका, क्योंकि वह उस कटोरे को पीना चाहता था जिसे पिता ने उसके लिए रखा था। अतः उसने उनसे कहा कि वे उसे खोजते हुए आए हैं तो उसे ही पकड़ें और उसके शिष्यों को छोड़ दें। मेरे मित्रों, यीशु के आदेश के वशीभूत उन्हें शिष्यों को छोड़ना पड़ा। अब वे यीशु को पकड़कर महायाजक हन्ना के पास ले जाते हैं। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा हुआ है, तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। मित्रों, ध्यान दीजिए कि यहूदी धर्म गुरुओं ने यीशु को पकड़ने का षड्यंत्र तो रचा था, परंतु पर्व के समय उसे पकड़ते हुए डरते थे कि कहीं जनता या जनसमूह बलवाना कर दे। यीशु परमेश्वर का नियत समय जानता था, अतः वह परमेश्वर के कार्य में विलंब करना नहीं चाहता था। इस कारण वह एकांत में चला गया कि उसे पकड़ने वालों को उचित अवसर मिल जाए। यीशु अपनी मर्यादा और महिमा में समय के साथ आगे बढ़ रहा था। मेरे मित्रों, उन्होंने उसे बांधा जिसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वह जगत की नींव डालने से पूर्व ही घात किया जा चुका था। वह उस भेड़ की नाई था जो ऊन कतरने वालों के सामने मुख तक नहीं खोलती है, अर्थात मुख बनी रहती है, चुपचाप खड़ी रहती है। उससे तो विरोध की कोई भी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। वे उसे हन्ना के पास ले गए। यह विवरण केवल यूहन्ना ही हमें देता है। इतिहास से जानकारी मिलती है कि हन्ना अत्यधिक बुद्धिमान, चतुर और महादुष्ट महायाजक था। यद्यपि कार्यकारी महायाजक रोम द्वारा अधिकृत महायाजक काइफा था, हन्ना धर्मगुरुओं का प्रधान था और मेरे विचार में उसी ने यीशु को पकड़ने, उस पर दोष सिद्धि और उसे क्रूस पर चढ़ाने का षड्यंत्र रचा था। यीशु पर अभियोग एक दिखावा था जिसके पीछे हन्ना की युक्ति थी, उसकी चतुराई थी। मेरे मित्र, यह कैसा दुर्भाग्य है कि यहूदी जाति को हन्ना, काइफा और पिलातुस के कुकर्मों का फल मिला। रोम ने शताब्दियों तक यहूदियों को मसीह का हत्यारा कहा और इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में यहूदियों को पीड़ित किया गया। सत्य तो यह है कि हम सब यीशु की मृत्यु के उत्तरदायी हैं, क्योंकि हमारे पापों का दंड उसे मिला, हमें नहीं। अतः हमें उसकी मृत्यु का दोषी किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष को नहीं देना चाहिए। मेरे विचार में यूहन्ना इस पद द्वारा हमें बताना चाहता है कि यीशु की मृत्यु पूर्व निर्धारित थी। उन्होंने महासभा में निर्णय ले लिया था कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए यीशु का मरना उचित है और चतुर हन्ना ने युक्ति तैयार की कि उसे रोमी न्याय द्वारा मृत्युदंड दिलवाया जाए। अतः अभियोग केवल एक दिखावा था। हम देखते हैं शमौन पत्रस द्वारा पहला इनकार। आपको ध्यान होगा कि पत्रस यीशु के साथ जाने का आग्रह कर रहा था और उसने यहां तक कह दिया था कि वह उसके लिए अपनी जान भी दे देगा, और यही कारण था कि वह लड़ने मरने को तैयार था और उसने तलवार चलाई जबकि उसे तलवार चलाना नहीं आता था। पत्रस मन से सच्चा था, परंतु यीशु ने उसे स्पष्ट कह दिया था कि वह उसका अनजाने में 3 बार इनकार करेगा। मेरे प्रियो, सत्य यहाँ यह है कि हम अपने सामर्थ्य में कुछ नहीं कर सकते हैं। पौलुस का भी यही अनुभव था कि उसमें इच्छा तो थी परंतु शरीर साथ नहीं देता था। केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही हम मसीह के साथ रह सकते हैं। पत्रस संभवतः मन में सोच रहा था कि वह यीशु को दिखाएगा कि वह उसके लिए जान दे सकता है, क्योंकि कई बार हम सब भी ऐसा सोचते हैं। हम यूहन्ना 18 उसके 15 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, शमौन पत्रस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। यह अन्य चेला महायाजक का जाना पहचाना था जो यूहन्ना था। यूहन्ना की वहां अपनी पहचान थी, अतः उसके लिए वहां परीक्षा की संभावना नहीं थी, परंतु पत्रस के लिए वहां जाना संकट से पूर्ण था। यूहन्ना पत्रस को बाहर खड़ा करके द्वारपाल से अनुमति लेने गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ कैफा के महल में चल रहे नाटक का या उपनाटक का आनंद लें। आप उसे देखें कि क्या होता है। यूहन्ना 18 उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा, तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालिन से कहकर पतरस को भीतर ले आया। यूहन्ना के लिए तो प्रवेश निषेध नहीं था, परंतु पतरस को कोई नहीं जानता था, अतः यूहन्ना को उसके लिए खड़ा होना था और इस प्रकार पतरस को राजमहल में प्रवेश प्राप्त हुआ। यूहन्ना संभवतः वहां जाता रहता था और यही कारण था कि उसे कोई कठिनाई नहीं थी, परंतु पतरस भयभीत था। पतरस ने चुप रहना नहीं सीखा था, अतः उसकी बोली से द्वारपालिका उसे पहचान गई कि वह गलीली है। उस दासी की एक छोटी सी बात ने ही पतरस के होश उड़ा दिए और उसने प्रभु का इनकार कर दिया। इसमें हमारे लिए एक पाठ है, एक सीख है। हमें अन्य विश्वासियों पर अपने विचार नहीं थोपने चाहिए। संभव है कि जहां वह जा पाए हम नहीं जा सकते हैं। यूहन्ना का महायाजक के महल में प्रवेश करना उचित था, परंतु पतरस का वहां जाना उचित नहीं था, अर्थात कोई जरूरत नहीं थी। यूहन्ना 18 उसके 17 पद में लिखा है, उस दासी ने जो द्वारपालिन थे पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। ध्यान दीजिए, वह जानती थी कि यीशु के अनुयायी वहां भी आएंगे, अतः उसने पतरस को गलीली पहचान कर पूछा कि वह उसका शिष्य तो नहीं। पतरस इनकार करके तुरंत आगे बढ़ गया। मेरे मित्रों, हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 18 उसके 18 पद में, दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधका कर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा था। ध्यान दीजिए, इतनी सुबह वहां अधिक लोग नहीं थे, परंतु सुरक्षा कर्मी वहीं पर आग ताप रहे थे। पतरस भी उनके साथ जाकर खड़ा हो गया। तब हम आगे देखते हैं कि महायाजक के समक्ष अभियोग, यूहन्ना 18 उसके 19 से 21 पद में हम पाते हैं, तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछा। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैंने जगत से खोलकर बातें की है, मैंने सभाओं और आराधनालयों में जहां सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या कहा है। अभियोग के मध्य भी यीशु की गरिमा पर ध्यान दीजिए। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 18 उसके 22 और 23 पद में, जब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो तू मुझे क्यों मारता है? मेरे प्रिय मित्र, यीशु हर परिस्थिति में आपके और मेरे पापों के लिए अपमान एवं मृत्यु को गले लगा रहा था, परंतु उन पर यह भी स्पष्ट किया कि वे मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे थे। उनके पास यीशु के विरुद्ध कोई गवाह न था, परंतु फिर भी उन्होंने उसे मारा। व्यवस्था के अनुसार अंधकार में न तो अभियोग चलाया जाना था और न ही कोई निर्णय लिया जाना था। दूसरी बात कि जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए बंदी पर हाथ उठाना नियम के विरोध था। यूहन्ना 18 उसके 24 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, हन्ना ने उसे बंधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया। यूहन्ना द्वारा इस पद के लिखने का उद्देश्य था कि वह स्पष्ट करे कि हन्ना ही इस शैतानी कार्य का मुख्य खलनायक था। हम आगे देखते हैं पतरस द्वारा दूसरी बार इनकार, यूहन्ना 18 अध्याय 25 से 27 पद में, शमौन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा था, तब उन्होंने उससे कहा, क्या तू भी उसके चेलों में से है? उसने इनकार करके कहा, मैं नहीं हूं। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारे में न देखा था? पतरस फिर इनकार कर गया और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। मेरे प्रियो, अन्य सुसमाचार वृत्तांतों से हमें समझ में आता है कि पतरस यीशु का इनकार करने के कारण फूट फूट कर रोया था। मेरे विचार में उसने यीशु के रक्त रंजित चेहरे की झलक देखी और यीशु की आंखों में भी झांकने का अवसर उसे मिला था। यदि वह मलखुस के संबंधी से बात कर रहा था तो निश्चित है कि उसने बड़ी दृढ़ता से यीशु का इनकार किया होगा। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि वह उसके क्षमा के लिए क्रूस पर मरने जा रहा था और यीशु ने पत्रस से पहले ही कह दिया था कि उसने उसके विश्वास की दृढ़ता के लिए प्रार्थना की थी। मेरे प्रिय मित्र, यीशु का इनकार करके भी पत्रस परमेश्वर द्वारा स्वीकार किया गया। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की संतान था और अपनी भूल के लिए उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया। परमेश्वर की संतान उससे दूर जा सकती है, परंतु परमेश्वर उससे दूर नहीं होता है। आप परमेश्वर के प्रति संवेदना रहित हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपके प्रति संवेदना रहित कभी नहीं होता। प्रभु ने उसे यह नहीं कहा कि उसकी भूल के कारण वह अब उसे अपने प्रयोजन में सहभागी नहीं बनाएगा। वह तो पुनरुत्थान के बाद फिर पत्रस के पास आया और उसे चुना कि वह पेंतिकोस्त के दिन पहला सुसमाचार सुनाए। क्या अद्भुत बात है! पत्रस का वह उपदेश अद्वितीय था। ऐसे उद्धारकर्ता और प्रभु के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं पिलातुस के समक्ष अभियोग। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और वे यीशु को कैफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर न गए ताकि अशुद्ध न हो परंतु फसा खा सकें। मेरे मित्रों, यह बड़ा ही रोचक नाटक है। धर्म और यीशु आमने सामने खड़े हैं। यीशु फसा को पूरा करने जा रहा है, वे उसे घात करने जा रहे हैं, परंतु न्यायालय में उपस्थित होना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे फसा के लिए अशुद्ध हो जाएंगे। क्या वे वास्तव में धर्मी हैं? उनके ऊपर यीशु का लहू है। यीशु तो फसा की पूर्ति था और यहाँ हमें अपना मन खोजना है। क्या आप केवल धर्मी हैं या प्रभु यीशु से भी जुड़े हैं? यहाँ पर पिलातुस का दृश्य देखिए, वह बाहर जाता है, भीतर आता है, बाहर जाता है और फिर भीतर आता है। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया। पद 29 में हम पाते हैं, तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया। पद 33 में पाते हैं, यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया। पद 38 में हम पाते हैं, इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। अध्याय 19 के 1 पद में पाते हैं, पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा। पद 9 में हम पाते हैं, और फिर किले के भीतर गया, यह भी पद 9 में है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया। पद 13, मेरे प्रियो, पिलातुस को यरूशलेम में रहना अच्छा नहीं लगता था। वह कैसरिया में रहता था, परंतु पर्व के समय वह यरूशलेम में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि वहां संपूर्ण विश्व से यहूदी तीर्थ यात्री आते थे और पिलातुस रोम की ओर से नियुक्त किया गया राज्यपाल था। हम यूहन्ना 18 उसके 29 से 32 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की नालिश करते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया कि यदि वह कुकर्मी न होता तो हम तेरे पास उसे न सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपने व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले। यह इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह पता देते हुए कही थी कि उसका मरना कैसा होगा। पिलातुस उनकी युक्ति समझ रहा था कि वे यीशु को मृत्यु दिलवाना चाहते हैं, अतः वह उनके अन्याय के फंदे से अपने आप को बचाते हुए कहता है कि तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार इसका न्याय करो। ये वही लोग हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 33 पद में बड़े गौरव से कह रहे थे, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। मेरे प्रियो, वे रोम के दास थे और यीशु की मृत्यु की याचना कर रहे थे। यीशु ने महीनों पूर्व भविष्यवाणी की थी कि यहूदी शासक उसे अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। यहूदी व्यवस्था के अनुसार मृत्यु दंड पथराव करना होता था। भजन संहिता 22 में यीशु के क्रूसीकरण की भविष्यवाणी है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। यह क्रूसीकरण है और यीशु को भविष्यवाणी की पूर्ति हेतु रोमियो के हाथ क्रूस पर चढ़ाया जाना अवश्य था। हम यूहन्ना 18 अध्याय उसके 33 से 35 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है, तूने क्या किया है? 36 पद, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं, यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। ध्यान दीजिए, मेरा राज्य यहाँ का नहीं। मूल भाषा यूनानी में जो संबंध सूचक अव्यय लगाया गया है उसका हिंदी रूपांतरण है के बाहर, अर्थात यीशु ने कहा मेरा राज्य बाहर का है, परंतु उसने यह भी नहीं कहा कि उसका राज्य इस पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा। यशाया उसके राज्य के युग का वर्णन अध्याय 11 पद 9 में करता है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र पानी से भरा होता है। यीशु युद्ध, राजनीति, बैर भाव या सांसारिक सहयोग से राजा नहीं बनेगा। पिलातुस मन ही मन में यहूदियों से घृणा करता था, परंतु क्योंकि उसने दाम देकर वह पद पाया था, अतः वह यहूदियों को रुष्ट करना नहीं चाहता था, उन्हें दुखी करना नहीं चाहता था, अन्यथा रोम उसे हटा देगा। यीशु राजनीति की चाल से राजा नहीं बनेगा और न ही युद्ध करेगा। उसने तो पत्रस से भी कहा था कि वह तलवार म्यान में रख ले। उसका राज्य न तो वर्तमान का था और न ही राजनीति का था। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु अपने नाम से मनुष्यों को एकत्र कर रहा है, जैसा प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, ये मनुष्य बुलाए हुए हैं जिन्हें कलीसिया कहते हैं, और वह एक दिन उन्हें इस संसार से उठा लेगा और उसके बाद वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने आएगा। हम यूहन्ना 18 अध्याय उसके 37 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस उलझन में पड़ गया था। यीशु ने उससे कहा, जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। भजन संहिता 45 उसके 1-4 पद में लिखा है, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपने कटी पर बांध, सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 38 पद में, पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। पिलातुस का पूछना कि सत्य क्या है घमंड का प्रदर्शन था या उलझन का? वह मार्ग सत्य और जीवन से सामने खड़ा था। यूहन्ना ने आगे चलकर लिखा है कि उसके सुसमाचार लिखने का उद्देश्य है कि हम विश्वास करें कि यीशु ही मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मेरे मित्रों, क्या आपका भी यही प्रश्न है कि सत्य क्या है? क्या वह आपके लिए सत्य है? क्या आपने उसमें सत्य का सामना किया है? पिलातुस यीशु को बाहर ले गया और सबके सामने कहा, मैं तो इसमें कुछ दोष नहीं पाता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 39 पद में लिखा है, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। सो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं। पिलातुस यथासंभव प्रयास कर रहा था कि उसे कोई निर्णय न लेना पड़े। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए फसह पर यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 18 उसके 40 पद में, तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं परंतु हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे। और बरब्बा एक डाकू था। पिलातुस ने कल्पना भी नहीं की थी कि वे बरब्बा डाकू को छोड़ने की पुकार करेंगे, क्योंकि पिलातुस को विश्वास था कि यीशु निर्दोष था। मत्तियाई के सुसमाचार 27 अध्याय उसके 18 और 24 पद में हम इसे पाते हैं। और मार्कुस भी लिखता है 15 अध्याय उसके 10 पद में, वह जानता था कि प्रधान याचकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। लुका लिखता है 23 अध्याय उसके 20 पद में, पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया। आगे हम 22 पद में देखते हैं, मैंने उसमें मृत्यु दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई। यूहन्ना 18 के 38 में, मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता। यूहन्ना 19 के 12 में, इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 13 पद में, जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया। मेरे मित्रों, इन सब बातों के उपरांत भी पिलातुस में यीशु को मुक्त करने का साहस नहीं था। मेरे प्रियो, हमारे पास भी 3 चुनाव हैं। पहला, कि हम यीशु का इनकार करें या उसे स्वीकार करें या संकट का मोल लें। यीशु को चुने या बरब्बा को, सत्य को जाने या असत्य को। चुनाव आपके और मेरे सामने है कि आप किसे चुना चाहते हैं, इस संसार को या प्रभु यीशु मसीह को। आज आप निर्णय लें और देखें कि आप कहां पर हैं। यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आप अवश्य ही थोड़े समय बैठ करके आज इस वचन के अनुसार से निर्णय लेंगे और अपने जीवन को एक सही स्थान पर खड़ा करेंगे। प्रभु आपके निर्णय में आपकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है,
दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है,
सारी बीमारियां यीशु के अधीन है,
सारी बीमारियां यीशु के अधीन
है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है,
आत्मिक शक्तियां।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है।